सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। क्लास प्रारंभ होने वाली है। माता सरस्वती की कृपा प्रसाद से आप सब ज्ञान की वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि स्वाध्यायः परमं तपः, स्वाध्याय को परम तप की उपमा दी है। स्वाध्याय करने में कोई परिश्रम भी नहीं है, कोई व्यय भी नहीं है, केवल मन को मोल्ड करने की आवश्यकता है। और अज्ञानता से ज्ञान की ओर जब ये प्राणी आता है तो निश्चित रूप से अंधकार से प्रकाश की ओर उसका गमन होता है। छह डाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। संसार में भ्रमण कराने वाली जो चार गतियां हैं उनके बारे में आपने जाना है। आगे दूसरी ढाल के अंदर अज्ञानता और मिथ्यात्व की बात को समझने का हमें प्रयास करना है कि जो अनादिकाल से हमने मिथ्या भ्रांतियां पाल रखी हैं, उन मिथ्या भ्रांतियों को हटाकर अपनी आत्मा की दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनानी है, यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। तो अब चलते हैं मंगलाचरण के साथ। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञान सा शिव स्वरूप शिव कार नमहु त्रियोग संहार के। मन वचन काय इन दोनों तीनों योगों को संभाल करके सावधानी पूर्वक वीत राग विज्ञान का जो मोक्ष पंथ को साकार करने वाली है उस वीतराग विज्ञानता को नमन करके आप दूसरी ढाल के सातवें श्लोक में आते हैं। आपने छह छंदों के द्वारा पांच तत्वों के विपरीत श्रद्धान को जाना कि किस प्रकार से जीव अजीव आश्रव बंध और संवर इन पांच तत्वों पर विपरीत श्रद्धान करके और जिनेंद्र भगवान की वाणी की सही सही जानकारी वो नहीं कर पाता। आगे छठे और सातवें तत्व माने निर्जरा और मोक्ष तत्व के प्रति किस प्रकार का विपरीत श्रद्धान होता है उसको बताते हैं। रोके न चाह निज शक्ति खोय शिव रूप निराकुलता न जोय याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। अब निद्रा का सही अर्थ क्या है? कर्मों का आत्मा से एक देश झड़ जाना वह निद्रा है। और कर्म झड़ते कैसे हैं? तपस्या के द्वारा निर्जरा होती है, संयम साधना के द्वारा, व्रतों के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है। वरना कुछ कर्म ऐसे हैं जो फल दे करके और अपने समय से निश्चित रूप से झड़ते ही झड़ते हैं, जैसे पेड़ से पत्ते एक मौसम के आने पर झड़ जाते हैं और बाकी समय अगर उन्हें झाड़ना होता है तो लाठी डंडा लगा करके उसे मार करके तब झाड़ना पड़ता है। तो लाठी डंडा क्या है? इच्छा निरोधस तपहा, इच्छाओं का निरोध किया तप हो गया। कुछ खाने की इच्छा हो रही है, किसी को कुछ कहने की इच्छा हो रही है, तो इन इच्छाओं के ऊपर निरोध करना तप है और उस तप से निर्जरा होती है। तपसा निर्जरा च कहा है, तप से निर्जरा भी होती है, संवर भी होता है और तपस्या से ही मोक्ष भी होता है। तो इच्छाओं का रोकना तप है, जिससे कर्मों की निद्रा होती है। मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता, अपनी इच्छाओं को नहीं रोक पाता। वह तो कहता है कि मुझे इच्छाओं को रोकना नहीं है और मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चलना है। तो जो नहीं रोकते हैं इच्छाओं को, इसलिए उनकी आत्मा की शक्ति, उनकी एनर्जी व्यर्थ में चली जाती है। वही जो एनर्जी, जो शक्ति व्यर्थ में ये जीव खोता है, यही निर्जरा तत्व का विपरीत सिद्धांत है। वरना स्ट्रेट फॉरवर्ड चले कि हमने छोटा सा भी नियम पालन कर लिया, या अपनी शक्ति के अनुसार बड़ा छोटा कैसा भी नियम पालन किया, और हमने जाना कि इससे निर्जरा होती है कर्मों की निर्जरा। अब आप स्वाध्याय कर रहे हैं तो ज्ञानावरण कर्म की निर्जरा हो रही है, माने जो ज्ञान नहीं प्रकट हो पा रहा था, वह ज्ञान पढ़ने से, सुनने से, समझने से प्रकट हो रहा है। तो ज्ञानावरण कर्म जो था, जो पर्दा पड़ा था, वह हटना शुरू हुआ। एक ही अक्षर पर आवरण पड़ा हुआ है, आप इस बात को समझना। यानी जितने अक्षर का ज्ञान हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, समझो उतने अक्षर पर पर्दा पड़ा है। उसे ही अक्षरावरण कर्म कह लो, ज्ञानावरण कर्म कह लो। तो जब ज्ञान अर्जित करते हैं, पढ़ते हैं, गुरुओं से सुनते हैं, तो ज्ञानावरण कर्म हटता है और उतना ज्ञान हमारे प्रकट हो जाता है। इसी तरह से सारा सारे कर्मों की बात है कि जब तपस्या की जाती है तो वे कर्म झड़ जाते हैं। ये तो सही रीति है। और उन कर्मों को नहीं झाड़ना, अपनी मनमानी प्रवृत्ति करना, और इस बात पर श्रद्धा नहीं करना कि हाँ तपस्या से कर्मों की निर्जरा होगी, तो यही निर्जरा तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान है। यह अग्रहित मिथ्या दर्शन की बात चल रही है। जो हमने किसी से ग्रहण नहीं किया, लेकिन यह अनादिकालीन अविद्या की प्रवृत्ति से चला आ रहा है अज्ञान, तो निर्जरा तत्व का ये विपरीत श्रद्धान हुआ। अब मोक्ष तत्व का, जब निर्जरा ही नहीं होगी तो मोक्ष कहाँ से हो जाएगा? तो वह आनंद स्वरूप, आनंद रूप जो है, आकुलता से रहित मोक्ष तत्व है। और उस मोक्ष तत्व को भी नहीं समझना, मोक्ष का सच्चा लक्षण क्या है? कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः, संपूर्ण कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना, इसको कहते हैं मोक्ष। और जो मोक्ष के इस स्वरूप को ना समझ करके बस संसार के सुख को ही मोक्ष जैसा सुख मानने लगते हैं, यही मोक्ष तत्व के प्रति उनका विपरीत सिद्धांत है। तो समझो कि मोक्ष तत्व, वास्तविक जो मोक्ष तत्व है, उसे तो जिनेंद्र भगवान ने बताया है कि जो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं वे कभी संसार में आते ही नहीं। एक बार मोक्ष होने के बाद पुनः संसार में अवतार नहीं होता। और अगर अवतार मान लिया तो समझो हमारा मोक्ष तत्व पर विपरीत सिद्धांत हो गया। यही सब अग्रहित मिथ्या दर्शन है। और इस उल्टे सिद्धांत के साथ, इस विपरीत सिद्धांत के साथ में जो कुछ भी ज्ञान हुआ, वह अग्रहित मिथ्या ज्ञान हो गया। ज्ञान तो सबके अंदर कुछ ना कुछ रहता है। किसी ने जन्म से यही जाना है कि वह मरना और मारना है, तो उसका यह अग्रहित मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि उसने ना आत्म तत्व को समझा, ना ज्ञान के सही स्वरूप को समझा। तो मिथ्या दृष्टि का जितना भी ज्ञान है वह सब मिथ्या ज्ञान है। इससे अलग से मिथ्या ज्ञान की बात ही नहीं कही गई। सातों तत्वों पर विपरीत सिद्धांत करना, ये मिथ्या अग्रहित मिथ्या दर्शन हुआ। और उस मिथ्या दर्शन के साथ जो ज्ञान है वह मिथ्या ज्ञान हो गया, वह अग्रहित मिथ्या ज्ञान। इसीलिए बताते हैं कि हे आत्मन, आपने अनादिकालीन अज्ञान के संस्कार के कारण इन तत्वों का जो विपरीत सिद्धांत कर रखा है, अब उसको हटाओ, उस पर्दे को हटा दो, ताकि अपना सम्यक दर्शन बन जाए। और जो फिर उसके बाद जो ज्ञान होगा वह सम्यक ज्ञान बन जाएगा। तो ऐसा अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान होता है। अब आगे के श्लोक में अग्रहित मिथ्या चारित्र का लक्षण बताते हैं। निजुत विषयनि में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्या चरित्र यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे अब जे ग्रहित सुनिए सुते है। पद्धड़ी छंद के अंदर ढूंढारी भाषा में पंडित दौलत राम जी ने तमाम चरणानुयोग और करणानुयोग के ग्रंथों का सार भर करके रखा है, इसमें कोई संदेह वाली बात, इसलिए लोगों को छैडाला पढ़ना अच्छा लगता है और जो चीज पढ़नी अच्छी लगती है उससे निश्चित रूप से कर्मों की निर्जरा होती है। एक बार छैडाला पढ़ लिया या एक बार प्रतिदिन में आलोचना पाठ पढ़ लिया तो कम से कम पुराने पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं और नए नए जो बनेंगे तो मकान में आए हुए कचरे के समान या धूल के समान है, पुनः पुनः उसको साफ करना पड़ता है। अब आपको समझना है कि अग्रहित मिथ्या चारित्र क्या चीज है। कह रहे हैं इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्या चरित्र, माने मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ में जो इंद्रियों के विषय भोग भोगे जाते हैं। सारे संसारी प्राणी अपनी अपनी योग्यता, अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी क्षमता, अपने अपने इंद्रियों आदि की व्यवस्था के अनुसार विषय भोगों को भोगते हैं। वह एक चींटी है, तीन इंद्रिय जीव है, लेकिन उसके पास भी आहार, भय, मैथुन, परिग्रह ये संज्ञाएं लगी हैं। तभी तो देखो खाने के लिए भागती है। जब बरसात आने लगती है तो उससे पहले ही चींटी जो है अपने योग्य सामान इकट्ठा करके जाके अपने बिल में रख लेती है। तो ये सब अनादि अविद्या के संस्कार हैं। भले मन नहीं है, आंख नहीं, कान नहीं, मन नहीं, लेकिन उसकी आहार संज्ञा चलती है और अपने योग्य वो सब कुछ कर लेती है। तो ऐसे कहा कि हर प्राणी अपने अपने इंद्रिय की और अपने गति के अनुसार जो विषय प्रवृत्ति में लगा रहता है, इंद्रियों के विषयों में लगा रहता है, उनमें जो प्रवृत्ति होती है मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ जितना भी आचरण है वह मिथ्या चारित्र कहलाता है। अब आप समझो कि हमारे आचार्य ने, आचार्य उमा स्वामी ने तत्कार सूत्र का पहला सूत्र क्या कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता जहां हुई वहां मोक्ष मार्ग मिल गया। तो अब किसी ने पूछा तो संसार का मार्ग क्या है, तो अब इससे अर्थापत्ति लगा लो, अर्थात मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्गः। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये संसार को बढ़ाने वाले हैं, ये संसार के मार्ग हैं और उन्हीं में भटक रहा है लोग, भंवर जाल में सब लोग भटक रहे हैं, अटक रहे हैं। कहीं आग लगी है, कहीं बाहर निकलने भयानक जंगल है, ऐसा संसार का भयानक जंगल इसके अंदर अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ प्रवृत्ति करता हुआ ये जीव मिथ्या चारित्र में पड़ जाता है। यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे है अब जे ग्रहित सुनिए सुते। ये तो कह रहे मिथ्यात् आदि यानी दर्शन ज्ञान चारित्र को मिथ्या रूप से कहना तो ये जीव के साथ स्वभाव से अनादिकालीन स्वभाव से बने, उनका वर्णन किया है। तो मिथ्यात्व को दो प्रकार का बताया, एक ग्रहित मिथ्यात्व, एक अग्रहित मिथ्यात्व। तो ये अग्रहित मिथ्यात्व है जो स्वभाव से जीव को नीचे की ओर ले जाता है, संसार की ओर ले जाता है, ये अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हुए। और अब जे ग्रहित सुनिए सुते, अब जो मन से ग्रहण किया जाता है, किसी गुरु से ग्रहण किया जाता है या किसी मिथ्या शास्त्र में पढ़ करके पाल ली जाती है, ऐसी भ्रांतियां तमाम तरह की, या गलत आचरण होने लगता है या मिथ्या ज्ञान हो जाता है, तो ये किसके उद्देश्य, मिथ्यात्व के उद्देश्य। ग्रहित मिथ्यात्व का मतलब है जो ग्रहण किया जाता है दूसरे के उपदेश से ग्रहण किया जाता है, उसको सुनिए सुते, उसको अच्छी तरह से आप सुनिए। जो बिना ग्रहण करने वाला है वह तो प्राकृतिक रूप से चला आया, विरासत में आपने पाया, क्योंकि संसार के अंदर विपरीत मान्यताएं अधिक हैं। देखो क्या है, एक व्यक्ति से पूछा गया, स्कूल के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी थे, अध्यापक ने प्रश्न किया कि बताओ संसार कैसा है। एक बच्चे से पूछा, बताओ तुम संसार कैसा लगता है। उसने कहा, गुरुजी संसार तो बहुत बुरा है, संसार बहुत ज्यादा बुरा है। बोले क्यों बुरा है। तो उसने कहा कि देखो संसार इतना बुरा है कि यहाँ पर दो रात के बीच में एक दिन आता है, दो रात के बीच में एक दिन आता है, तो यहाँ तो अंधकार ज्यादा है और प्रकाश कम है, इसलिए संसार अंधकारमय है, बुरा है। कई बच्चों से इसी तरह पूछा, एक ने बताया कि गुरुजी संसार बहुत अच्छा है। बोले कैसे। बोले देखो दो दिन के बीच में यहाँ एक रात आती है, तो यहाँ प्रकाश ज्यादा है और अंधकार कम है। अब क्या, एक ने कहा दो रात के बीच में एक दिन आता है और एक ने कहा कि दो दिन के बीच में एक रात आती है, इसका मतलब क्या रहा। दृष्टि फेर है, एक ने अंधकार को चूज किया और एक ने प्रकाश को चूज किया। देर इज नथिंग गुड आर बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। एक लेखक ने लिखा कि संसार के अंदर कोई वस्तु अच्छी बुरी नहीं है, हमने जैसा सोच लिया वैसा वो बन जाती है अपने लिए। वही वस्तु विष बन जाती है, वही वस्तु अमृत बन जाती है, वही संगति अच्छी बन जाती है, वही संगति बुरी बन जाती है। अगर हमने अच्छाई ले ली किसी में तो अच्छे बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह से अपनी दृष्टि को फेर करके आप ग्रहण करने वाले मिथ्यात्व को बताना है, तो आप अभी तक जो अनादि अविद्या के संस्कार से अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में पड़े हुए थे, अब ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है जो गुरु आदि के द्वारा प्राप्त होती है, इसको श्रवण करते रहना है और अपने अपने श्रद्धान को मिथ्यात्व से हटाकर सच्चे श्रद्धान की ओर लाकर सम्यक दृष्टि बोना है। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना है।